हर पल की पहचान है आज, हर जागरण का बीज है आज, हर दिन की सुबह है आज, दिल में बजे मौन का साज, हर मुरली का आदि है आज, हर मुरली का सार है आज, जो बीत गया वो ना रहा अपना, आने वाला बस एक सपना, इस पल में छिपा हर राज, शिव का ये आह्वान है आज, जब मिटे सब झूठे रिवाज, तब दिखे पवित्रता का ताज, शिव को भी उस पर हो नाज, बने वो आत्मा सरताज, हर लक्ष्य का दि है आज, हर लक्षण का स्वर है आज, हर आत्मा की पुकार है आज, इस जीवन का सार है आज, हर मुरली का दि है आज, हर मुरली का सार है आज, मन के आंगन खिले प्रकाश, कटे माया का मोह पाश, दिल में गूंजे स्नेह का साज, बहे अलौकिक वर्षा, हर मुरली का आदि है आज, हर मुरली का सार है आज, तपस्या का है क्षण, होगा पावन हमारा जीवन, आज दुआएं देने का भाव, आज दुआएं लेने का प्रवाह, आज सुधार का अवसर, आज मौन की साधना, आज तप की आराधना, आज प्रेम की बारिश, आज वरदानों की आशीष, आज उत्सव परवाज का, आज उत्सव उत्सव
आज का, हर मुरली का आदि है आज, मुरली का सार है आज।
ओम शांति। एक बहुत बड़े योगी महात्मा एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव वालों को पता चला, वो सभी महात्मा जी के पास गए और कहा कि आप मंदिर में आइए, कुछ ज्ञान की, धर्म की गहरी बातें हमें बताइए। महात्मा जी ने टालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो गांव वाले तैयार न हुए और आखिरकार एक रविवार शाम वो महात्मा जी मंदिर आए। सारा गांव एकत्र हुआ था। महात्मा जी ने पूछा, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के विषय में जानते हैं? सभी ने हाथ खड़ा किया। महात्मा जी ने कहा, जब आप ईश्वर को जानते हैं तो मेरे बोलने का कोई कारण ही नहीं है, मैं क्या बोलूं? क्योंकि ईश्वर को जानना अर्थात सब कुछ जान लेना, तो तुम लोग तो सब जानते हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। और वो चले गए। गांव वालों ने सोचा गड़बड़ हो गई, फिर गए एक दो दिन बाद और कहा कि आप आए, कुछ तो सुनाओ। महात्मा जी फिर आए। इस बार गांव वालों ने ठान लिया था कि नहीं कहेंगे अगर यह ऐसा ही प्रश्न पूछा तो। वो फिर पूछते हैं, आप में से ईश्वर के बारे में कितने लोग जानते हैं? सबने कहा हम नहीं जानते। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें ईश्वर के विषय में कुछ पता ही नहीं है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें विश्वास भी नहीं है, तो बोलने का कुछ फायदा ही नहीं, मैं जा रहा हूं। और वो चले गए। गांव वालों ने मीटिंग करी कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर गए महात्मा जी के पास। अंतिम बार हमारी प्रार्थना है आप आए। महात्मा जी अगले रविवार फिर आते हैं, पूछते हैं, तुम में से ईश्वर के विषय में कितने लोग जानते हैं? आधे लोग हाथ खड़ा करते हैं, आधे नहीं। महात्मा जी कहते हैं, जो ईश्वर के विषय में जानते हैं वो उनको बता दे जो नहीं जानते, और इतना कहकर वो निकल पड़े। गांव वाले थोड़े नाराज हो गए महात्मा जी से, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे उत्तर दिए, और उसी रात वो जाने को निकले। गांव का एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके पास आया और पूछता है, हमें क्या करना चाहिए था? जो आप रुक जाते या हमें कुछ सुनाते? तब महात्मा जी कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि तुम ईश्वर के विषय में जानते हो क्या, यदि सभा मौन होती, नहा नना, तो शायद मैं कुछ बोलता, क्योंकि ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जाता, वो अव्याख्य है, अनस्पीकेबल है। उसे हृदय की तरंगों से जाना जाता है, और जब चेतना मौन हो जाती है तब जाना जाता है। वो भीड़ में नहीं, वो शोर में नहीं, वो हृदय के एकांत में अनुभव होता है, उस निस्तब्ध मौन में। तो यदि उस परम का अनुभव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चुप। क्या करना पड़ेगा? चुप। मधुबन में आना बहुत बड़ा भाग्य है और खास तपस्या के लिए आना और बड़ा भाग्य है। यहाँ के वातावरण में दिव्य प्रकंपन है, निरंतर जहाँ योग चालू रहता है, जहाँ पर मर्यादा और पवित्रता चहुओर बिखरी हुई है, जहाँ के की दीवारों में दिव्य ऊर्जा के प्रकंपन है, ऐसा विशुद्ध चेतना का ये द्वीप है। और यहाँ अगर आओ और केवल क्लास सुनकर, खा पी कर, बातें कर कर, पिकनिक मनाकर, सौगात लेकर चले गए, तो ये सस्ता बड़ा, ये सौदा घाटे का सस्ता हुआ, सौदा हुआ। यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाना है, इसलिए फर्स्ट रूल मौन। अगर यहां ही मौन नहीं रख सकते तो जहां रहते हैं वहां कैसे रखेंगे? वहां कारोबार है, संसार है, गृहस्थी है, जिम्मेदारियां है, दूसरे रखे न रखे, फर्स्ट रूल इज मौन, पूर्ण मौन, आर्य मौन। जब तक मधुबन में है ऐसे समझो कि मैं ही अकेला हूं यहां और कोई है ही नहीं। नियति ने अवसर दिया है रुकने का, ड्रामा ने ये चांस दिया है ठहरने का, खुद को देखने का, परखने का, अपनी संपूर्ण जीवन की यात्रा में मैं कहां तक हूं, इसकी पड़ताल करने का। और यहां आकर भी यदि सुबह से लेकर रात तक केवल बातें और व्यर्थ में अगर लगे रहे तो यहां से जाएंगे सेंटरों पर और वहां जाकर अनुभव सुनाएंगे जरूर कि बहुत अच्छा था, ये भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, पर यह सब का प्रभाव कुछ दिनों तक ही टिकेगा। जितना गहरा मौन उतना गहरा अनुभव। यदि यहां आकर भी सुबह अमृत वेले से ही कमरे से निकलकर बाबा के रूम तक आते आते बातें करते करते आ रहे, अमृत वेले के बाद में भी बातें करते करते जा रहे, मुरली में बातें करते करते जा रहे, मुरली के बाद बातें करते करते जा रहे, जहां शोर है वहां अनुभव नहीं। पहरा लगा देना है, चुप। भीतर बहुत काम करना बाकी है, ये ऑपरेशन है, सर्जिकल स्ट्राइक, यहां चीरा लगाना है। और ऑपरेशन देखा है ना, ऑपरेशन थिएटर के बाहर रेड लाइट होता है ना, वहां किसी को अलाउड होता है क्या? रिश्तेदार को? कोई नहीं। यहां चेतना की सर्जरी है, जन जन के विकार उसमें भरे हैं, वासनाएं उसमें भरी है, ईर्ष्या द्वेष उसमें भरा है, अशांति भरी हुई है, दर्द भरा है, जख्म भरे है। इतना बड़ा ऑपरेशन करना है। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो सारा रिकॉर्ड उसमें है, तो कितना मौन चाहिए और कितनी एकाग्रता चाहिए। इसलिए यहां समझो जैसे कोई है ही नहीं, मैं ही हूं। दूसरा अगर बात करे तो करने दो। मधुबन में जब तक है तब तक मौन, मधुबन में जब तक है तब तक नजर नीचे, चलते हुए ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, नजर नीचे। एक पूरा दिन कल इसका अभ्यास करना है। नजर नीचे, कौन कैसा दिखता है, काला है गोरा है, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, किसने क्या किया, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या करना है, किस लिए आए हैं यहाँ, ये सब करने आए हैं, इसने क्या किया उसने क्या किया, ये इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। बहुत पुरानी बात है, बहुत एक अनन्य भाई मधुबन के आंगन में खड़ा था। एक बहन जा रही थी सेंटर की, समर्पित बहन। उसने पूछा, बहन जी आप कहाँ से हो? मनमोहिनी दीदी पीछे थी। पूछा, क्या शादी करनी है क्या? व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें क्या करना है? माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम। यहां आए हैं किस लिए? केवल तप के लिए आए हैं, पिकनिक करने नहीं आए हैं। संसार में पिकनिक के बहुत सारे स्पॉट्स हैं, यहां किस लिए आए हैं? केवल तप के लिए आए हैं, मौन साधना के लिए आए हैं। यहां क्या करते हैं, कौन क्या करता है, कौन बातें करता है, कौन सो रहा है, कौन उठ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहला नियम मौन, दूसरा नियम मोबाइल स्विच्ड ऑफ अगर हो सके तो, उसका टच भी ना हो जब तक यहां आए तब तक, इलेक्ट्रॉनिक्स आउट। जब तक वो कट नहीं होता है, बुद्धि संसार से चिपकी रहेगी। किसी का कॉल, किसी का मैसेज, किसी का कुछ, किसी का कुछ, स्विच्ड ऑफ, नो साइलेंस नो वाइब्रेशन मोड, स्विच्ड ऑफ। जिसको फोन करना है इस क्लास के बाद फोन कर देना, अगर अब तक स्विच ऑफ नहीं किया है, उनको बता देना अगले 2 दिन तक मोबाइल बंद रहेगा। जब भट्टी खत्म हो जाएगी अंतिम दिन उसको ऑफ ऑन कर देना। सोचो ये 2 दिन 3 दिन मुझे केवल और केवल बाबा के साथ बिताने हैं। रूल नंबर 3, इस कैंपस के अंदर लॉक्ड, लॉकडाउन। इधर घूमो उधर घूमो, यहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, मार्केट जाओ यहां जाओ वहां जाओ, इसको मिलू उसको मिलू। अपना कमरा, मुरली क्लास, चार धाम, डाइनिंग और यहां, बस। जहां जहां आंखें जाती है ऊर्जा भागती है। आंखों पर पहरा, जबान पर पहरा। इन 3 नियमों के साथ भट्टी की शुरुआत करनी है। जो नहीं कर रहे उनको नहीं करने दो। यदि हमें कुछ यहां से लेके जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बिना त्याग के कोई अनुभव नहीं मिलेगा। यहां आ गए, घूम लिया, थोड़ा बहुत शांति का अनुभव हुआ, वो शांति यहां की शांति है, तुम्हारी नहीं। यहां से जाते ही वो खो जाएगी। वो शांति का अक्षय स्रोत यहां से उठाकर ले जाना है। इसलिए इस 3 बिंदुओं के साथ भट्टी की शुरुआत करनी है। और कब करनी है? आज। कब करनी है? आज। हर अव्यक्त मुरली की शुरुआत किस शब्द से होती है? आज। आज बाप दादा। कौन सा आज? 2007, 2005, 2006? नहीं, आज अर्थात आज। इस आज में ही सारा रहस्य छिपा है। मुझे आज करना है, अब करना है, अभी करना है। कोई करे ना करे, यहां रहने वाले करे ना करे, मुझे करना है। कीमत देकर आए हैं तो वसूल करके जाना है, ऐसे ही आके घूम फिर के नहीं जाना है। यहां पर ये वो स्थान है जहां पर संस्था के साकार संस्थापक ब्रह्मा ने तपस्या की है, मम्मा ने तपस्या की है, दादियों के चरणों से ये भूमि पुनीत हुई है। मधुवन में ऐसा कोई समय नहीं है जहां तपस्या नहीं हो रही होगी। रात को 1 बजे भी आओ तो कोई ना कोई बैठा है वहां, या तो सिक्योरिटी वाला बैठा है या कोई बैठा है। जिस हॉल में आप अभी बैठे हैं यहां पर अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरलियां चली है, इन दीवारों पर उन मुरलियों के निशान है। बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी वो सारे प्रकंपन पकड़ पाएंगे, नहीं तो यहां आए चारधाम की यात्रा मैकेनिकल यांत्रिक, यहां बैठे यहां बैठे यहां बैठे यहां बैठे, चलो मुरली क्लास में गए मुरली सुनी हो गया, क्लासरूम में आए क्लास सुना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और सबसे महत्वपूर्ण बात डायरी और पेन होनी चाहिए। अभी भी हम देख रहे हैं डायरी और पेन मिसिंग है, बिना डायरी और पेन तो बैठना ही नहीं है। एक डायरी और पेन जब तक भट्टी में है एक छोटे से बालक की तरह बन जाओ जिसे कुछ भी नहीं पता। फर्स्ट आज आज अभी ज्ञान में आया है, सुबह सुबह एक दिन का बच्चा, मुझे तो कुछ नहीं पता, आत्मा परमात्मा क्या है मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा छोटा बच्चा बन जाना है। और जो भी क्लासेस यहां होगी उनके सारे मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिख के रखना है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो केवल कंडरस है और भक्ति मार्ग है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, रामायण की कथा बहुत अच्छा, क्या क्लास था वाह, उससे हुआ क्या? कुछ नहीं, नथिंग। जैसे थे आए थे वैसे ही, जाते समय भी वैसे ही, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया बस। तो सभी पेन रखो अपने पास अभी अभी, और डायरी भी, डायरी नहीं है तो पेपर ले लो दूसरे से बाजू वाले से अभी, उसके सिवा क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। और जो मोबाइल पर लिख सकते हैं वो मोबाइल पर लिखो, अगर मोबाइल अभी भी पास में है, क्योंकि हो सकता है कि सुनते सुनते कोई ऐसा अद्भुत विचार टच कर जाए, कोई एक ऐसा प्रश्न जीवन का जिसका 10 साल से उत्तर ढूंढ रहे थे वो अचानक मिल जाए। जरूरी नहीं है कि उस वक्ता के भाषण से मिले, उस मौन की अवस्था में और यहां बैठे बैठे ही अचानक टच हो जाए। और जो भी क्लासेस सुनो या मुरली सुनो उसमें 3 काम साथ में चलते रहे, सबसे पहला सुनना, दूसरा लिखना, और तीसरा लिखते लिखते और सुनते सुनते योग। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, 1 सेकंड में अभी स्थिर बैठो और अनुभव करो कि परमात्मा किरणें मुझ पर पड़ रही है, दिव्य ज्ञान की किरणें। तो ये 3 कार्य होते रहे, मुरली सुनते समय, क्लास सुनते समय, और ज्ञान शब्द नहीं है, प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय क्या है? आज या आज क्या है? आज तपस्या का है क्षण, होगा पावन हमारा जीवन। आज दुआएं देने का भाव, आज दुआएं लेने का प्रवाह, आज सुधार का अवसर, मिटे भूलों का सफर, आज माफी का है मौसम, करने और मांगने की है कसम, आज धन्यवाद का है स्वर, भाव मन में है ये सुंदर, आज साहस की है घड़ी, विजय श्री आरती ले है खड़ी, आज मौन की साधना, आज तप की आराधना, आज प्रेम की बारिश, आज वरदानों की आशीष, आज उत्सव परवाज का, उड़ान का उत्सव है, और आज उत्सव कौन सा है, आज का। पिताजी अपने बेटे से पूछते हैं, तुम्हारा फेवरेट डे कौन सा है? वो कहता है टुडे। कितनी अच्छी कहानी है। सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है मेरा? आज। हर मुरली का आदि है आज, हर मुरली का सार है आज, हर पल की पहचान है आज, हर जागरण का बीज है आज, हर दिन की सुबह है आज, जो बीत गया वो न रहा अपना, आने वाला बस एक सपना, जो बीत गया वो एक मृत है, जैसे कोई डेड बॉडी को कैरी कर रहा है, और आने वाला तो मृग मरीचिका है, स्वप्न है केवल, इस पल में छिपा है राज, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, इस पल में पूरे 5000 वर्ष छिपे हुए हैं, इस पल में पूरी सदी छिपी हुई है। जब मिटे मिटे सब झूठे रिवाज, तब दिखे पवित्रता का ताज, शिव को भी उस पर हो नाज, बने वह आत्मा सरताज, हर लक्ष्य का आदि है आज, हर लक्षण का स्वर है आज, हर आत्मा की पुकार है आज, इस जीवन का सार है आज, आज। जो कुछ करना है वो कब करना है? आज, अभी, इस समय। धर्म की भाषा है वर्तमान। धर्म की भाषा क्या है? वर्तमान। कल करूंगा, कल देखूंगा, नहीं, अभी अभी, यहीं से अभी बैठे बैठे ही सोच लो कि मुझे अब वो नहीं जीना है, वैसे तरीके से नहीं जीना है, मधुबन में आने से पहले, अब यहां से मैं जाऊंगा एक नया ही व्यक्ति जाएगा। मधुबन में लोग एक रात के लिए कितने तड़पते हैं रुकने के लिए, एक रात, केवल एक रात के लिए, कितनी भीड़ रहती है कि बस एक रात रुकने दो। शांतिवन में रुक गए, ज्ञान सरोवर में रुक गए, पर पांडव वन में एक रात रुकना है बस, केवल रात। शाम को आते हैं, रात पर रुक के सुबह चले जाते, किस लिए रुकते? अमृत वेले के लिए। यहां आकर भी अमृत वेला मिस कौन कौन कर रहा है आज सुबह का? कोई है? तो यहां आए हैं तो यहां का पूरा फायदा उठा के जाना है। और तपस्या होती है रात में। कब होती है? रात के सन्नाटे में। इंग्लिश में एक शब्द है सिबिलेंस। सिबिलेंस अर्थात ऐसा आवाज होता है ना रात में, तब। जब तक मधुबन में है, 3:30 के बाद तो भीड़ चालू हो जाती है, जो कुछ करना है वो उससे पहले, 2 और 3:30 के बीच। अमृत वेले का टाइम 2 to 5, उस मौन में, उस एकांत में, उस पिन ड्रॉप साइलेंस में। मधुबन उस समय कैसा अनुभव होता है? जैसे गर्भ है, लाल लाल अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। इंग्लिश में कहते पिन ड्रॉप साइलेंस। उस समय शांति स्तंभ पर बैठो कैसा अनुभव होता है, कुटिया में बैठो कैसा अनुभव होता है, आंगन में बैठो कैसा अनुभव होता है। दिन भर तो कारोबार है, चर्चाएं हैं, बातें हैं, ड्यूटीज है, कर्म है, क्लासेस है, बहुत सारी चीजें हैं। आत्मा जो जुड़ जाती है परमात्मा से, वो कब? सुबह सुबह प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम तदब्रह्म निष्कलमहम नच भाति भूत संगम। यह शरीर मैं हूं ही नहीं, यह शरीर और शरीर की चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मास्टर बीज रूप सुबह की साकार मुरली, लाइट हाउस सुबह की साकार मुरली। बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ो, सुबह की साकार मुरली। ये कैसे होगा? आत्मा की प्यास सुख की है, भूखी है वो। अगर उसे अमृत वेले 2 से 5 के बीच अतिंद्रिय सुख नहीं दिया तो सारे दिन भर उसे देह का सुख चाहिए, किसी के स्पर्श का सुख चाहिए, कुछ खाने के स्वाद का सुख चाहिए, और फिर मन में संघर्ष उत्पन्न होता है, ये हो क्या रहा है? हम तो इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी, फिर भी शरीर को देखने की इच्छा है, शरीर के स्पर्श की इच्छा है, ये स्वाद ने गुलाम बना रखा है। क्यों? इसका अर्थ ये नहीं तो क्या करे? संघर्ष करे। और यदि हम मन को कहे कि ये मत करो तो मन में द्वंद चालू हो जाता है। उत्तर संघर्ष नहीं, प्रकाश है, उसे समझाओ। रीवायरिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वो सुबह होगा। और सुबह उठ के केवल योग ही नहीं करना है, बहुत सारी चीजें की जाती है सुबह, पर टाइम चाहिए। अगर उठेंगे ही 3:30 बजे और भाग भाग के आएंगे 4:15 तक और 4 तक तो योग करेंगे बस। और ढेर सारी चीजें करनी होती है, चिंतन, मनन, पढ़ाई, स्टडी, एकांत। जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। आत्मा परमात्मा को जान लिया अर्थात सब कुछ ठीक हो गया, नहीं है। वो सूचनाएं हैं, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, संगम युग है, 5,000 साल का चक्र है, ये ब्रह्मा, उसमें शिव बाबा विनाश सामने खड़ा है, ये परमात्मा महावाक्य है, देही अभिमानी बनना है, दिव्य गुण धारण करना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, ये सारी क्या है? सूचनाएं मात्र है। सूचनाएं परिवर्तन नहीं करती। तप चाहिए, तप। बैठे बैठे ही संकल्प करो, मैं तप करने आया हूं। और कब से करना है? आज से। आज मौन की साधना, आज तप की आराधना, आज ही सारे कार्य करने हैं। कितनों को माफ करना है, कितनों से माफी मांगनी है, आज माफी का है मौसम। कितना बोझ है, कितने चीजें मन में निगेटिविटी भर के रखी है, किस किस के विषय में? क्या हमने सबको माफ कर दिया? क्या हमने सबसे माफी मांग ली? क्या आज दुआएं देने का है समय? जो हलचल चल रही है, जो गलतियां हमने जीवन में की, क्या उसके लिए पश्चाताप कर लिया? क्या भगवान से माफी मांग ली? दूध से धुला हुआ तो कोई नहीं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तो है। यहां आए हैं शुद्धता, शुद्धि के लिए। ये तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान में क्यों जाते हैं लोग? पुण्य कमाने के लिए। मधुबन से बड़ा तीर्थ स्थान इस संसार में कौन है? यहां आकर भी यदि मधुबन को बहुत ही साधारण समझ लिया है तो यह भूल है, और हो सकता है यह आपकी मधुबन में यह अंतिम विजिट है। आगे संसार में क्या होगा कुछ पता नहीं, हो सकता है यह लास्ट भट्टी है, इसके बाद में ऐसी भट्टी नहीं होगी, और होगी भी तो पता नहीं ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा, और इस स्थान पर होगा कि नहीं पता नहीं। समाज संसार की क्या अचानक क्या हो जाएगा? कुछ कोविड से पहले किसी ने सोचा था? कुछ अचानक हो गया ना, अचानक भगवान ने भी ये कहा है अचानक होगा। बाइबल में लिखा है द डे ऑफ जजमेंट शैल कम लाइक अ थीफ एट नाइट, अंतिम समय चोर की भांति आएगा, जैसे रात में कोई चोर आता है ना चुपके से, उसी तरह द डे ऑफ जजमेंट शैल कम। कोई भी क्षण अंतिम समय हो सकता है, उस क्षण में हम टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, शॉर्ट्स देख रहे, रील्स देख रहे, टाइम वेस्ट कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे, घूम रहे, खा पी रहे, और खबर ही नहीं है क्या चल रहा है। और वो सारा एक ऊपर ऊपर से चल रहा है, अमृत वेला कर रहे, क्लास में जा रहे, बैठ रहे, सेवा कर रहे, सब ऊपर ऊपर से। डीप तो वासनाएं धधक रही है, अशांति है, अपने आप से सामना करने का ये समय है आज। मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, इस भ्रम से बाहर निकलने का समय है आज। रोम में एक परंपरा थी, जब भी कोई विजेता होकर आता था युद्ध में, वो योद्धा पूरे शहर में बैंड बाजे बज रहे हैं, उसका स्वागत हो रहा है, उसका सत्कार हो रहा है, उसे तिलक लगाया जा रहा है, आरती हो रही है, जयघोष हो रहा है, उसके पीछे उसका एक सेवक रहता था जो पीछे पीछे चलता था और उसको बताया करता था ये जो हो रहा है ना सारा, ये सब अनित्य है, ये बस थोड़ी देर के लिए, ये भ्रम है, तुम ये ना समझो कि सब कुछ ठीक है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ताकि पैर जमीन पर रहे। आज मौन की साधना, आज तपस्या का समय, आज माफ करने का समय, आज माफी मांगने का समय, आज दुआएं देने का समय, आज प्रभु प्रेम की बारिश से भीग जाने का समय, आत्मा की सबसे गहरी प्यास है मिलन की, पर यह मिलन परमात्मा से नहीं हो पाता, इसलिए शरीरों के मिलन के पीछे वो भागती है, और जिससे केवल और केवल अतृप्ति ही मिलती है, इंद्रियों के जितने सुख है और जितने भोग है उससे क्या प्राप्त होता है, बेचैनी एक, खालीपन दो, पश्चाताप तीन, और अतृप्ति छोड़कर जाती है वासना। मरने का समय है फिर भी वंस मोर की कामना के साथ ही मरती है चेतना, इतना उसमें भोग विलास भरे पड़े हैं। मुरली में शब्द आता है आग, क्या चाहिए, आग। यह हल्की फुल्की साधना, सुबह उठे, अमृत वेला किया, मुरली क्लास गए, मुरली सुनी, फिर कमरे में आए, फिर बाबा की याद में भोजन बनाया, याद में भोजन खाया, ट्रैफिक कंट्रोल किया, नुमा शाम का योग किया, मुरली पढ़ ली, मुरली डिस्कस कर ली, और बाबा की याद में सो गए, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। इसे क्या कहते हैं, साधारण पुरुषार्थ। और जो ये भी नहीं कर रहे वो तो निगेटिव में है, नीचे चल रहे, माइनस। उस माइनस से पहले जीरो तक आओ, पहले माइनस से जीरो, पहले मानो कि हमारी दुर्गति हो गई है, तब सदगति का मार्ग मिलेगा। ये मुरलियों में आता है किसके लिए, अज्ञानियों के लिए, कि वो मानते ही नहीं हम पतित है। अगर उनको कहो तुम पतित है तो चिढ़ते हैं, आता है ना, जब तक स्वीकार नहीं करते हम भटक गए हैं, तब तक मार्ग नहीं मिलेगा। अहंकार को झुका देना ही अध्यात्म है। ये जो मैं बैठा है अंदर, जो कहता है मैंने सब जाना है, क्या जाना है, कुछ भी नहीं जाना है, वो जो जाना है वो सूचनाएं हैं, वो सत, वो ज्ञान थोड़ी है। आज तो इस सत्र में हम सात बातें, आठ बातें देखेंगे, जो आज नहीं करनी है। सबसे पहला आलस, और सबसे बड़ा आलस है अमृत वेले उठना और फिर सो जाना, क्योंकि जल्दी उठ गए। इतना जल्दी उठेंगे तो मेरी नींद का क्या होगा? नींद की जंजीरों को तोड़ देना है। कुछ भी हो जाए, मौसम कैसा भी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, मनमोहिनी दीदी कहते थे उठने के बाद बिस्तर पर कोबरा नाक को देखो। कौन सा? कोबरा। फिर जाना ही नहीं उसके ऊपर। अमृत वेले के बाद सो जाना अर्थात की कमाई खलास। अमृत वेला किया, भागो कमरे में। किस लिए? सोने के लिए। 5 बजे सोते, फिर उठते 6 बजे, 6:30 बजे क्लास के लिए। अच्छी नींद आ जाती है। आती है ना? आती है कि नहीं आती है? वो समय है चिंतन का, वो समय है किसी क्लास को सुनने का या नोट्स लिखने का, वो समय है प्रकृति के साथ जुड़ने का, वो समय है एक्सरसाइज करने का, सोने का नहीं। यहां से संकल्प लेके जाओ, अमृत वेले के बाद आज से नहीं सोएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले दोपहर में सो जाओ, जब चाहे बाद में सो जाओ। और नींद की तो चिंता ही मत करो, नींद अपना मार्ग खुद ढूंढ लेगी। नींद का सोचो ही मत, सबको सुनाते बैठते मेरी नींद नहीं हुई, मेरी नींद नहीं हुई, मेरी नींद नहीं हुई, मेरी नींद नहीं हुई। और योग नहीं हुआ वो कभी सुनाते? अरे आज मेरा योग रोज 1 घंटा होता है, आज 50 मिनट हुआ, ऐसा सुनाते हैं क्या? नहीं। पर नींद यदि कम हुई तो कितनी चिंता है उस नींद की। नींद अपना मार्ग खुद ही ढूंढ लेगी। बस में बैठे बैठे नींद आ जाएगी, हो जाएगा काम। कार में बैठे बैठे नींद आ जाएगी, नींद की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। और सबसे अच्छी नींद कब आती है ब्राह्मणों को? अमृत वेला और मुरली, ये 2 विशेष टाइम है। किसके है? नींद के। सही बोला ना? बाकी टाइम नींद नहीं आती, ये अच्छी नींद आती है। रतन मणि दादी यहां मुरली सुना रहे थे, एक बार माताएं बैठी थी, सब सो रही थी नीचे। दादी ने कहा जाके पीछे खड़ी हो जाओ, वो जो दिख रहा है दीवार खड़ी। पर माता इतनी महारथी नींद में थी कि खड़े खड़े सोने चालू कर दिया। नींद को कौन रोक सकता है? तो सबसे पहला है आलस, अपने छिपे हुए आलस को ढूंढना है, कहाँ है। एक्सरसाइज करते ही नहीं है, वजन बढ़ते जाता है, बहुत सारी बीमारियां आती है, कुछ 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 होते रहता है। शरीर हमारा लचीला हो, फुर्त हो, बिना हेल्थ के अध्यात्म फेल है। ढेर बीमारियां होती रहती है, एडमिट होते रहते, कुछ होते रहते, कहां से अध्यात्म, कहां से पुरुषार्थ करेंगे? यहां दर्द, वहां दर्द, ये हो रहा है, पेट दर्द, कमर दर्द। और योग भी करेंगे तो बाबा घुटने ठीक कर दो, ये पैर ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, उसको ज्ञान मिलाओ, इसको ज्ञान मिलाओ, ऐसा करो वैसा करो, फरियाद। याद नहीं है क्या है? खाली फरियाद है। तुम ये भी कर दो, तुम वो भी कर दो, तुम ऐसा भी कर दो, तुम वैसा भी कर दो, बेटी को ब्रह्मा कुमारी बना दो, बेटे को बीड़ी तंबाकू से फ्री कर दो, मुक्त कर दो, यही करते हैं ना। एक माता आई थी ओपीडी में हमारे, तो कह रही थी मेरा ना आज जाने का है। मैंने कहा ठीक है जाओ। तो नहीं, मेरा वेटिंग लिस्ट है। तो आप थोड़ी सकाश दो, कंफर्म हो जाए टिकट उसके लिए सकाश। आलस ढूंढना है कहां है और उसको वहां से हटाना है। दूसरा है बहानेबाजी। जो दिव्य मर्यादाएं बताई है उसमें कोई बहानेबाजी नहीं। और इस जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा है संपूर्ण पवित्रता, चाहे कुछ भी हो जाए। इस धारणा में गिरना नहीं है, ये सर्वोत्तम सर्वोच्च धारणा है, हाईएस्ट। कोई देह आकर्षित ना करे, कोई वासनाएं मन में ना पनपती रहे अज्ञात क्षणों में। अगर आती है उसे साक्षी होकर देखो, उसे क्या चाहिए, क्या है वो, संघर्ष नहीं करना है उसके साथ, उसे देखना है, तटस्थ भाव से देखना है। अगर लड़ाई करेंगे तो वो और मन जैसा योद्धा और कोई नहीं है। मन के साथ लड़ाई नहीं करनी है, मन को प्यार से समझाना है। कोई व्यक्ति है, किससे आकर्षण हो गया है, किससे अटैचमेंट हो गई है, उसे समझाना है ये क्या है, कौन ये साथ देने वाला है, ये साथ चलने वाला है। आज ही ओपीडी में एक माता आई थी, उसके पति ने 2 साल पहले शरीर छोड़ा, कंटिन्यूस रोना रोना चालू है। उसकी याद आती है, उसकी आवाजें आती है, वही दिखता है। और ये भी पता है उसे, दोनों ही ज्ञान में चलते थे, 15 साल चले ज्ञान में, संपूर्ण ज्ञान है, पर योग पूरा रोने में ही जाता है। ये कैसी धारणा है, वो तो चले गए। ये जो दुखी है, इसके दुख के संस्कार वाइब्रेशन सब उस आत्मा को जा रहे। वो छोटा सा बच्चा होगा, कहीं पालने में रोते रहता होगा। जो गया वो गया, ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, यहां से अहमदाबाद जाना है, जिसको मेहसाणा उतरना है वो उतर जाएगा। अहमदाबाद वाला कहेगा नहीं नहीं तुम नहीं उतरना, अरे मेरा स्टेशन यही है, ना ना तुम मेरे साथ चलो। हर एक का अपना अपना स्टेशन है, उसको वहीं उतरना है। हम थोड़ी रोक सकते हैं किसको, पर पकड़ के अगर रखा तो क्या होगा, दुख। जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख। छोड़ दो, मुक्त करो आत्माओं को। ऐसी आत्माएं देखी होगी ना जो कोमा में होती है, शरीर नहीं छोड़ती। हो सकता है उनके आसपास वाले या वो खुद किसी मोह बंधन में है। वो आसपास वाले जो है रिश्तेदार, वो छोड़ना ही नहीं चाहते उसको, पकड़ के है एकदम। अरे उसको जाने दो, मुक्त करो। इस पकड़ को छोड़ने का समय है आज, अभी यहीं बैठे बैठे छोड़ दो, मुक्त कर दो किसी को, जिसको हमने मन में पकड़ के रखा है ना, जाने दो। उसकी यात्रा अलग है, उसका मार्ग अलग है, वो मेरी यात्रा का साथी नहीं है। कितना अच्छी लाइन है ये, मेरी तो अकेले की यात्रा है, वो कभी था ही नहीं, मुझे लगा वो मेरा है और मेरा साथी है, हम साथ साथ चलेंगे। कौन साथ, कैसा साथ, यहां अकेले कोई चलना मुश्किल है। द पाथ इज नैरो, बाइबल में लिखा है, ये मार्ग बड़ा सरकरा है, जामे दो ना समाए, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। यहां दो दो नहीं चल सकते, हर एक को तो अकेले ही जाना है, अकेले के ही पुरुषार्थ है, अकेले का ही सब है, जिस जिसको हमने सहारा बना के रखा है। इवन पुरुषार्थ में भी वो सब गिर जाएंगे, फिर क्या करोगे। अध्यात्म अर्थात अकेले हो जाना, सारे आधार गिर जाए तो कोई बहाना नहीं, कोई कारण नहीं। जितने जितने हम बहाने बनाएंगे, हम फंसे रहेंगे वहीं, गोल 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 गोल। जितने हम दूसरों को दोष देंगे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा के सामने बैठो और कहो कि ये सब अब मैं सब सहारे छोड़ता हूं, तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। जब तक तुम मुझे उत्तर नहीं दोगे, मैं हिलूंगा नहीं यहां से। बताओ मुझे, मुझे क्या करना है। वो दिखाते हैं रामायण में, दशरथ के बाल सफेद हो जाते, वो गुरु के पास जाते, ये नहीं कहते कि मेरा कोई वंश नहीं है, मैं क्या। वो पूछते, ऐसा कोई मार्ग बताओ, जाई विधि होई नात हित मोरा, ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो जाए। ये नहीं कहता है कि मुझे बच्चा दो। तो बाबा से ये नहीं कहो ये करो वो करो, वो बताएगा ना, उसको पता है। कि तुम सोचो, तुम बताओ मुझे, मुझे क्या करना चाहिए। और वो टचिंग्स भी तभी होगी जब हम मौन में होंगे, एकांत में होंगे, एकाग्रचित होंगे। ये मेडिटेशन हॉल सुबह 3 बजे से पहले खुल जाता है, खाली होता है, यहां आके बैठ के देखो क्या होता है। सन्नाटा छाया रहता है इस हॉल में, रेड लाइट, ये सारी कुर्सियां खाली होती है, जैसे इंतजार कर रही है कोई आए और बैठकर तपस्या करे। नो एक्सक्यूजेस। तीसरा, कंफर्ट जोन से बाहर। तीसरा है आज जो सुरक्षा का, जो सुविधा का क्षेत्र है उससे बाहर। आराम से सब चल रहा है, मतलब गड़बड़ चल रहा है। जीवन अर्थात क्रांति, कुछ नया करो जो अभी तक किया नहीं। कभी वॉकिंग के लिए नहीं गए, स्टार्ट वॉकिंग। कभी एक्सरसाइज नहीं की, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। कभी मुरली लिखी नहीं, पूरी की पूरी मुरली स्वच्छ सुंदर सुवर्ण अक्षरों में लिखो, देखो क्या होता है। ये लिखना जो है ना, ये मेडिटेशन बन जाए। नई स्किल्स, नया कुछ। और वो क्या नया, वो भी सुबह टच होगा कि बाबा मैंने अब तक ये सब किया, आगे क्या करना है तुम बताओ। ये जीवन यहां आके खड़ा है, अब क्या करूं, वही सब कुछ करूं जो अब तक कर रहा था, वही सब कुछ या कुछ नया, कुछ न्यू। और वो क्या करना है तुम बताओ। कनेक्ट। तो ये जो सुविधा का क्षेत्र है उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। और यहां जब तक है ना, यहीं पर प्लान करके जाना है, यहां से वहां क्या करना है जाके। ठीक है, वहां जाके नहीं होगा। प्लानिंग कहां करनी है, यहां, किस किस के साथ। अमृत वेला मुझे क्या करना है, कितने बजे उठना है, कहां बैठकर अमृत वेला करना है। हो सके तो यहीं से डिजाइन करो, आपका जो कमरा है उसकी पोजिशन बदल दो, बिस्तर इधर है तो उसको उधर कर दो, आगे पीछे कर दो चीजों को। बाबा का फोटो वहां लगाए, वहां से हटा के दूसरी तरफ कर दो। कहां बैठना है, एक टेबल हो, एक चेयर हो, सारी अव्यक्त मुरलियां रखी हो, डायरी, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, कलर पेन्स, पेंसिल, सब कुछ, जैसे स्टूडेंट होते हैं ना वैसा। कहां क्रिएट करना है यहीं से सोच के जाना है। डायरी लेके जाओ, पेन लेके जाओ, सब कुछ, ताकि एक माइंडसेट क्रिएट हो कि हम ईश्वरीय स्टूडेंट है। खाली अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली और बैच लगा दिया और सफेद कपड़े पहन ली, ये कपड़े बदलने से कुछ भी नहीं होता ना, बैच लगाने से। हाँ, उसका अपना महत्व है, परंतु धारणाएं यदि गहरी लानी है तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो जो आज है 10 साल के बाद भी वही रहेंगे। जो 20 साल पहले जहां खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं। कितनी आत्माएं, कुछ स्पार्क ही नहीं है, डेड हो गए, जैसे मर गए हैं, जैसे स्त्री फिलफ कपड़े पर पूरा शांत, कोई उमंग उत्साह ही नहीं है। आज की मुरली में है ना चमक, बोला ना चमक। एक मुरली की लाइन है आज की, जो उत्तर देगा ना उसको तो इनाम देंगे हम। अभी तुम्हारी बुद्धि में डैश आया है, आज सुबह की अब साकार मुरली देखना नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि में डैश आया है। बाबा बीबा नहीं बोलना, जो मुरली में आया है वो चाहिए। एक शब्द है वहां पर, पहली बार ही सुना हमने तो, ये 3rd पेज, अभी तुम्हारी बुद्धि में डैश आया है। क्या चमत्कार। क्या आया है? चमत्कार। कितना अच्छा लाइन वाक्य है। ऐसे लाइन को ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है। कैसे खींचना है करके दिखाओ। ऐसे पकड़ के ऐसे खींचो, खींच लिया और फिर इधर भरना है। कंफर्ट जोन जो एक क्रिएट करके रखा है ना, अपना जो रूटीन पैटर्न है, हर व्यक्ति अपने रूटीन से बहुत प्यार करता है। अगर सोने के समय कोई नहीं कुछ आ गया मिलने तो बड़ा दुश्मन जैसे लगता है। एक पैटर्न सेट किया, ब्रेक द पैटर्न, एक नया पैटर्न क्रिएट करो। अभी देखो क्या होता है। एक नई दिनचर्या आज। मन रेजिस्ट करता है, मन कहता है ना 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 ना, क्या है झंझट में करना ये सब। जिसको बनना है बाप समान बने, हम ठीक है। यहां पर ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। एक भाई कहता था कि हम, मैं तो वो बनूंगा बस, लक्ष्मी नारायण राजाधिराज, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, बस अनाउंस करने का बैठने का, वो चले जाएंगे। अब इसमें क्या पुरुषार्थ चाहिए ना, अमृत वेले की जरूरत है। ये तो ये लक्ष्य है रखा है सतयुग का, अनाउंस, वो आ रहे हैं फिर जा रहे, लक्ष्मी नारायण की जय, हो गया। वो सतयुग का छोड़ो, यहां बिना पुरुषार्थ के ये ब्राह्मण जीवन डेड जीवन है, मृत जी रहे पर चलती फिरती लाशें चल रही है बस। वही दिनचर्या सदियों से, वही सब कुछ। उठो, थोड़ा बहुत याद करो, बैठो, मुरली क्लास में जाओ, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें लेके जाने के लिए, फिर लिखा, फिर प्रश्न है तुम्हें स्वर्ग की बादशाही कब मिलने वाली है, उत्तर लिखा, फिर डायरी बाजू में रखा, फिर मुरली सुनते रहे, बाप आए तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें मौत का बाजार गर्म हो रहा है, रावण बहुत तीखा है, माया मौसी आ जाती है, और पता नहीं कब कहाँ होता है, इतनी नींद में सब कुछ सुन लेते हैं, और जब मीठे मीठे होता है तो एकदम जागरण होता है, फिर फटाफट वापस डायरी लिया, वापस लिखा, धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट वन, तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी है, तुम्हें बाप समान बनना है, तुम्हें मीठा बनना है, ऐसे बनने वाले बाप समान भव, वो लिखा, फिर वरदान, वरदान तो ऊपर का लाइन लिख लिया, फिर थोड़ा सा डोल कर, फिर स्लोगन, मुरली बंद, काम पूरा हुआ, आज का काम पूरा हुआ, चलो अभी। कोई कोई माता है तो सेंटर पर ही डायरी रख के जाती है, कल खोलेंगे डायरेक्ट, फिर सेंटर से बाहर चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गया, कमरे में घर में पहुंचते पहुंचते प्रश्न उत्तर गया, नाश्ता बनाते बनाते वरदान गया, खाते खाते स्लोगन गया, और शाम होते होते पूरी मुरली क्या थी कुछ पता नहीं, बस इतना बताता बहुत अच्छी थी दीदी ने, बहुत अच्छी सुनाई, पहले तो तुम आते नहीं हो मुरली क्लास में, और फिर पूछते हो मुरली में क्या था, अरे बहुत अच्छी थी, पढ़ लेना एक बार, अरे क्या था वो तो बताओ, वो तो ये पता ही नहीं हमको, पूरा तो गया। ये कैसी ब्राह्मण दिनचर्या है। कोई देख ना ले, कोई कहे ना कुछ, इसलिए जाते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे इसको माया ने खा लिया, इसलिए मुंह दिखाई, चेहरा दिखाने के लिए सेंटर और वापस, बाकी करेंगे वही जो कर रहे हैं, नो चेंज। कंफर्ट जोन से बाहर। अगला, डिजिटल डिटॉक्स। जितना हो सके जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है, रात को 8 बजे 9 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ या रख दो बाहर, 9 PM डिजिटल कर्फ्यू, उसको बाहर कर दो। रात को सोते सोते मूवी देखते देखते, ट्रेलर देखते देखते, शॉर्ट्स देखते देखते, और रील्स देखते देखते, और बात करते करते, और चैट करते करते, और वीडियो कॉल करते करते सोएंगे तो रात में स्वप्न में भी वही लोग आएंगे, और सुबह उठते ही पहला संकल्प वो आएगा, फिर कैसे उठ सकेंगे जल्दी? बिल्कुल नहीं उठ सकते, फिर तो सुस्ती, नींद ही पूरी नहीं होती है। 11-11 बजे तक जागते रहेंगे, 10:30 बजे तक जागते रहेंगे, अगर कोई काम नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, दूर। ये एक इंटरवेंशन करते ही बहुत शांति आ जाएगी, ये एक। ट्रैप है वो गूगल में घुसते तो है पर आने का मार्ग नहीं है फिर कहां से कहां। एक क्लिक, दो क्लिक, तीन क्लिक, चार क्लिक, पांच क्लिक, एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से सीधा शूद्र कुमार। मायावी चाल है, इसलिए इन आंखों की बहुत देखभाल करनी है, इन कानों की देखभाल करनी है, क्या सुनते हैं वो। वायलेंस जितना देखते हैं वो सब अंदर चला जाता है, हिंसा। ये संसार की सारी कॉमेडीज चीप कॉमेडीज है, वो हंसा सकते हैं थोड़ी देर के लिए बस। क्या वो सारे कॉमेडियंस अशरीरी बना सकते हैं? बना सकते हैं, वो हंसा सकते हैं थोड़ी देर के लिए बस, उतना ही वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और वो हंसी भी बड़ी झूठी है, ऊपर ऊपर की, अतृप्ति ही लाती है वो, बेचैनी लाती है। चिंतन करके उसके बारे में सोचना ये ऐसा है, तब कहीं अंतर्मन उसे रिजेक्ट कर देगा फिर। अगर जबरदस्ती करोगे ये देखना नहीं, वो करना नहीं, तो और करने की इच्छा होती है। सिगमंड फ्राइड है, साइकेट्री के फादर, जिसको साइको एनालिसिस के फादर, अपने पत्नी के साथ एक बार गार्डन में जाते, छोटा बच्चा भी साथ में है, गार्डन क्लोज होने का समय हो जाता है, वो लोग बाहर निकलते हैं, वो बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सब जगह ढूंढते, अभी गेट क्लोज हो रहा है, वो अपनी पत्नी से पूछता है बच्चा कहाँ गया, वो कहती यही था, मुझे नहीं पता। फिर सिगमंड फ्राइड पूछता है क्या तुमने उसे कहीं जाने से मना किया था, वो कहती हाँ, वो फाउंटेन है ना फव्वारा, वहां जाने से मना किया था, वो कहता है वहीं होगा। वो जाके देखती है, वो पैर में पानी डाल के वहां पैर डाल के बैठा हुआ है किनारे पर। तो पत्नी पूछती है तुमको कैसे पता वो वहां है, सिंपल, बच्चा है, बच्चे को कहो ये ना करो, वो सबसे पहले करता है, क्योंकि वो जिद बनाता है फिर ये करके दिखाऊंगा। इसलिए ये माइंड भी ऐसा ही है, उसको कहो ये नहीं करना तो क्या करता है वो, और करता है। उसको समझाना है, हमारा जो मार्ग है दो मार्ग नहीं है, हमारा दमन का मार्ग नहीं है जबरदस्ती दबा के रखना, उसको दबा देना, और भोग का भी मार्ग नहीं है। ये दो मार्ग है संसार में, एक है संसार का जिसमें लोग भोगते हैं, और एक सन्यासी जो त्याग करता है, ये दोनों ही हमारे मार्ग नहीं है, क्योंकि एक तरफ दमन होता है और एक तरफ व्यक्ति भोगता है, भोग भोग के तो और ही कमजोर हो जाता है, इंद्रियों के सुख कितने भोगते हैं, सब विकारी बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारा मार्ग बीच में है, उस मार्ग का नाम है प्रेममयी ज्ञानमयी समझ। कौन सा मार्ग है? समझ, अंडरस्टैंडिंग, ये है। उस मन को समझाना है, अच्छा तुमको ये व्यक्ति अच्छा लगता है ना, क्या अच्छा लगता है उसमें, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। एक तपस्वी था, तपस्या करता था जंगल में, उसको अचानक एक दिन इच्छा हो गई जलेबी खाना है। अरे सदियां बीत गई, कभी संसार में गया नहीं, और बचपन की मेमोरीज तो रहती है ना, माँ के हाथ का भोजन स्वाद सब इधर समाया हुआ है अंदर, चाहे कुछ भी छोड़ दो वो सब रहता है अंदर। वो कहते हैं अब करूँ क्या, साधना में सुबह से लेके खाली जलेबी घूम रही है माइंड में। वो मार्केट जाता है, जलेबी लेके आता है, जबरदस्ती नहीं करता है, लेके आता है, ऐसे दिखाता है मन को, ये है, क्या चाहिए तुम्हें, ये चाहिए, क्या मिलेगा इससे, स्वाद या तृप्ति, लेता है और फेंक देता है, चैप्टर क्लोज। मन जो है ना उसको बड़ा ट्रिकी है, वो बहुत षड्यंत्र करता है, छल करता है, छल कपट करते रहता है, छलते रहता है दिन भर। इसके लिए जबरदस्ती उसे बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे अचानक परिवर्तन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग कहते हैं आज से हम चीनी खाना बंद कर देंगे, उसी दिन सबसे ज्यादा खाते हैं। एक भाई आया था, उसको डायबिटीज है कब से, पहले ही अनकंट्रोल रहता है। अभी आया तो 500 600 शुगर था। मैंने कहा ये कैसे बढ़ गया, तो कहता दादी का दिन था ना, तो मैंने दादी की याद में एक एक खाया पूरा सारा मीठा मीठा। मन बहुत षड्यंत्रकारी है, चालाक। अगला ईटिंग, ये भी एक मायाजाल है। इसको भी समझना, इस शरीर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए कितनी मात्रा में चाहिए, अपना डाइट खुद ही डिसाइड करना है। ये खाया तो ये हुआ, वो खाया तो ये हुआ, नाउ डिसाइड। ये खाता हूं तो भारीपन लगता है, फिर उठना नहीं होता है, उसको हटाओ, खुद ही डिसाइड करो कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अगला है एफ, पैशन। पैशन के बहुत सारी चीजें हैं, सूक्ष्म रूप से हम करते रहते हैं वो सारा। हम वो नहीं कर सकते जो संसार के लोग कर रहे हैं। लोग पाउडर लगाते हैं, सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, करते हैं ना, क्यों? अर्थात अभी सुंदर नहीं है। अर्थात मेकअप कौन करता है? जो असुंदर है। और आत्मा का सबसे बड़ा मेकअप और सबसे बड़ी सुंदरता है प्यूरिटी। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डाई लगाओ, ये लगाओ, वो करो, वो करो, ऐसा करो, वो करो, क्रीम लगाओ। हम मधुबन बाबा की कुटिया में बैठते हैं सुबह, कई बार ऐसा सेंट लगा के आ जाते हैं, कोई कोई 3 बजे, 2-3 तो परम धाम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं, इतना भयंकर सेंट, पूरा नाकों में नस नास पटाओं में अंदर घुस जाता है, इतना भयंकर सेंट सुबह सुबह। क्या है, किस लिए ये सारे सेंट, ये सारे पाउडर, ये सारे क्रीम, ये सारे डाई सेंट, क्या क्या क्या, ये सब की कुछ जरूरत ही नहीं है आत्मा। ये सब कुरूप बनाते, सब केमिकल्स है। दूसरी बात, ये सब क्या है, केमिकल्स। सब स्किन खराब हो जाती है, आते हैं पेशेंट्स, ये लगा दिया, वो लगा दिया, कितना सुंदर बनना है, कितना भी घिसो सुंदर नहीं बनेंगे चमड़ी, कुछ नहीं होने वाला। ये चलता फिरता शौचालय है, अंदर मल मूत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जाके देखते रहो, बीच बीच में हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ, बर्न वार्ड को देखो कैसा हाल होता है, वो टीबी पेशेंट देखो, किडनी डायलिसिस पेशेंट्स देखो, कैंसर पेशेंट्स देखो, वेयर इज द ब्यूटी, कहाँ है सौंदर्य, कैसा सौंदर्य, ये बस ये इतना है, चमड़ी तक है, इसको निकालो, कुछ नहीं अंदर। कचरा भरा है अंदर, और इसी के लिए सारा संसार पागल है। सारी फिल्में, सारी मैगजीन, सारा कुछ इस देह के इर्द गिर्द, देह के प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है। अपने मन को बैठ के समझाना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, क्या करना है उसे समझाना है, ये है सत्य। बुद्ध के पास कोई संन्यास लेने आता था तो वो उसको कहते थे 3 मास तक शमशान घाट पर ही रहना, रोज देखो सुबह से लेके शाम तक चिताएं जलते हुई, बस ये चिताएं जल रही है, कैसे बचाओगे अपने आप को वैराग से, इसलिए बीच बीच में जाते रहना, वैराग्य इंड्यूसिंग स्पॉट है वो, देखते रहना। अगला है गॉसिप्स, झगमोई झरमो, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हुआ, यहां क्या हो रहा है, वहां गॉसिप्स, अर्थात इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर। अव्यक्त वाणी है बाबा के, महावाक्य है, उसमें बाबा ने कहा जितनी जो न्यूज समाचार दिलचस्प होगा अर्थात उतना वेस्ट है उसमें। हमारे मन को क्या चाहिए? दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, स्पाइसी। इसने ये किया, अच्छा वो भाई पहले इस डिपार्टमेंट में था, अभी उधर से इस डिपार्टमेंट में चला गया, क्यों गया, कैसे गया, कब गया, पूरी इंफॉर्मेशन। क्या करना है, क्या करोगे? ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। सुकरात के पास कोई उसका दोस्त आया और कहने लगा मुझे कुछ बताना है। वो कहता है रुको, मेरी तीन शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त, जो तुम बताने वाले हो और जिसके बारे में बताने वाले हो, क्या वो अच्छी खबर है या बुरी है? वो कहता है वो तो खबर तो बुरी है। तो ठीक है, फेल, ये पहली टेस्ट। दूसरी, क्या ये सही है या गलत है? वो कहता है मैंने कहीं से सुनी है, मतलब नॉट श्योर, मतलब सेकेंड टेस्ट। तीसरा, इससे मेरा कल्याण होगा या अकल्याण होगा? वो कहता है कल्याण की तो कोई उसमें बात ही नहीं, मैं तो एकदम चटपटी न्यूज लाया हूं। वो कहता है बस ट्रिपल फिल्टर फेस्ट, मेरे पास मत आओ, जाओ, नहीं तो दुनिया में क्या भरा है, चटपटी खबरें, और वो सब क्या होती है, वेस्ट, जिसमें पर चिंतन और पर दर्शन होता है। इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। अरे तुम्हें क्या करना है, कौन क्या करता है, तो तुम जज ये हो क्या, भगवान हो, भगवान देख लेगा, जिसके लिए उसने अपना जीवन समर्पित किया है वो देखेगा, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और लास्ट है HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी। HSP अर्थात झरमुई, छुईमुई। किसी ने कुछ कह दिया, दुखी, उदास, नाराज, हमें कोई कुछ नहीं करना, टच मी नॉट। थोड़ा सा बोला कि आंखों में आंसू इधर है, रखे हुए हैं इधर, चालू बहना। ये मार्ग तो कठोर मार्ग है, अग्निपथ है। यहां ये ऐसे जो रोते रहते हैं ना, उनका कोई काम नहीं है, स्थान नहीं है उनके लिए, वो दुखी होते रहेंगे। नाराज होना, रूठना, फील करना, हर्ट फील करना, मुझे हर्ट हो गया, रोते ही रहते हैं, दर्द महल, रोनीता, रोनीटा, रोने वाले। टच मी नॉट, हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटीज। यहां तो अग्निपथ है, धधकती अग्नि पर चलना है, सहन करना है बहुत सारी चीजें। वो चित्र आपने देखा होगा दो हिरन का, एक हिरन है, एक तीर चुभा नीचे गिर गया, वही हिरन अब बड़ा हो गया है, मैच्योर्ड, पूरे शरीर में तीर ही तीर है, खड़ा है फिर भी। दुनिया चाहे जो करे, कितने भी हर्ट करे, आई स्टैंड स्ट्रांग, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ है, इसको जो करना है करते रहे। तो ऐसी ये 8 बातें थी। तो सभी डायरी, पेन, पेंसिल अब नीचे रख दो। जो पीछे भाई बैठे हैं, अगर सामने आ सके तो सामने बैठ जाएंगे। तपस्या जमीन पर बैठकर की जाती है। जो नहीं बैठ सकते, दर्द है, सामने सामने आ जाओ। जो कुमार है, जो बैठ सकते हैं, वो नीचे आ जाओ, नीचे। जो नहीं बैठ सकते वो ऊपर। तो अभी अगले 20 मिनट तक एक शक्तिशाली योग का प्रयोग करेंगे। शरीर से अंग न लगे, शरीर एक दूसरे को टच न करे। और अगले 20 मिनट ये अधिष्ठान की मुद्रा होगी। जहां उंगली रख दी बस वहीं उंगली भी ना हिले, जहां पैर रख दिया वहां पैर ना हिले। जैसे कोई तपस्वी बैठा है, स्थिर, अचल। जितना शरीर स्थिर होगा उतना आत्मा का प्रतिबिंब स्थिर होगा। जितना शरीर डोलते रहेगा, हिलते रहेगा, कुछ कपड़े का कुछ, कहीं खुजली, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, नहीं होगा। सोचो आप संदली पर बैठ के योग करा रहे हो, आपके सामने 20,000 लोग बैठे हैं, सारी आंखें ऐसी देख रही है घूर घूर के। अचल। सभी रेडी? रेड लाइट। सभी स्थिर, एकाग्र। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें खुली, शरीर की सारी हलचल समाप्त। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर, जैसे हिमालय की ऊंची चोटियों पर कोई तपस्वी बैठा है, स्थिर। कुछ पल के लिए आंखें बंद करेंगे, वातावरण में जो ध्वनि है उसको सुनेंगे। पूरा ध्यान संगीत की ओर। अब धीरे धीरे आ रही और जा रही श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। धीरे धीरे अपने संपूर्ण शरीर का निरीक्षण करेंगे, सिर के सिरे से पांव तक, मस्तिष्क, कान, नाक, होंठ, गाल। रिलैक्स। गर्दन, छाती का भाग। अपने मन को दौड़ाएंगे उन सभी अंगों पर, दाया हाथ, बाया हाथ, पीठ, कमर, दाया पैर, बाया पैर, एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक। एक भी अंग छूटने न पाए। कहां कौन सी संवेदना है वो देखेंगे, कहीं दर्द, कहीं खुजली, कहीं दुखाव, कहीं पीड़ा, कहीं चुभन, कपड़ों का स्पर्श। केवल देखना है। एक बार फिर से जो जो शरीर के ऊपर हो रहा है उस पर एक नजर दौड़ानी है। चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती, दोनों हाथ, पीठ, पेट, दोनों पैर, इस देह में मैं कहाँ हूँ। केवल शरीर का निरीक्षण करते करते ही धीरे धीरे अशरीरी अवस्था आ जाएगी। फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक शरीर को स्कैन करो। देह के भव्य भाल पर विराजमान, भ्रुकुटी तख्त पर बैठा मैं दिव्य मणि हूं, चेतना की बूंद हूं, दिव्य प्रकाश हूं, प्राण स्वरूप चैतन्य हूं। ज्योतिर्मय आत्मा से सारे शरीर में प्रकाश फैलते हुए देखेंगे। मेरे अंग अंग में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। अब मैं आत्मा शरीर को यहीं छोड़ सूक्ष्म वतन में जा रही हूं। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख हूं। आंखें खोल कर बाबा को देखेंगे। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि लेंगे। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। फिर से आंखें बंद करेंगे और अपने जीवन की यात्रा एक बड़े स्क्रीन पर देखेंगे। मेरा जन्म कहाँ हुआ, उस गांव को, उस शहर को याद करेंगे, वो घर, वो माता पिता, बहन भाई। मेरा बचपन कैसे गुजरा, यदि पढ़ाई की तो कहाँ की वो पाठशाला, और यदि नहीं की तो जीवन कैसे आगे बढ़ा, वो टीचर्स, वो स्कूल, वो गांव, वो शहर, वो यूनिफॉर्म, वो पढ़ाई। आगे बढ़ो, वो एग्जाम्स, कॉलेज, या फिर वो गांव का जीवन, विवाह, गृहस्थी जीवन, और फिर याद करो वो क्षण जिस दिन भगवान का परिचय मिला, वो पहली बार सेंटर पर जाना, कोर्स, मुरली, सेवाएं, भोजन, खुशी, परिवार का होने वाला विरोध, बाबा की मदद, वो सारे सीन आंखों के सामने लाने हैं अपने जीवन के। और आगे पहली बार मधुबन की यात्रा, प्रथम बाबा मिलन, अश्रुधारा है, बेहद परिवार, बेहद मधुबन, दादियों की पालना, प्यार, मधुबन निवासियों का प्यार। और आगे अलौकिक जीवन में आई हुई बाधाएं, समस्याएं, विघ्न, संघर्ष, हिसाब किताब। और आगे अब देखो अपने वर्तमान घर, सेंटर, सेवा केंद्र, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, कहाँ रहता हूँ, रहती हूँ, वहाँ की दिनचर्या क्या है, वो घर, वो ऑफिस, वो स्टूडेंट्स, लौकिक परिवार, पति पत्नी बच्चे। देखेंगे वहां की दिनचर्या, सुबह कितने बजे उठते हैं और क्या करते हैं। शाम तक की दिनचर्या, अब नया संकल्प लेंगे मधुबन में आज, इस सभा में मैं आत्मा अपने जीवन को दिव्यता से भरने का संकल्प लेती हूँ। जो बाह्य मुक्ता है, जो विकार है, जो भटकाव है, आज से बंद। आज नया जन्म हुआ है, आज नया सवेरा हुआ है, आज भाग्य ने करवट बदली है, आज चेतना का सूर्योदय है। अब देखो हम अपनी दिनचर्या कैसी चाहते हैं, अपने उसी लौकिक घर, सेंटर, गीता पाठशाला, ऑफिस, एक नजर दौड़ाओ एक नई दिनचर्या की तरफ और वो साकार होते हुए देखना है। उठ गए हैं सुबह सुबह, अभी तो 2 भी नहीं बचे, बैठे हैं तपस्या में 3 घंटा, शक्तिशाली योग, दिनचर्या में कहीं आलस नहीं, अलबेलापन नहीं, बहानेबाजी नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर, सादगी जीवन, भोजन और भोजन के प्रति अनासक्त भाव, स्वाद की गुलामी से मुक्ति, डिजिटल डिटॉक्स, व्यर्थ से परहेज, एक शक्तिशाली दिनचर्या की परिकल्पना, संबंधों में मिठास, सारा जीवन प्रभु प्रेम में समर्पित, घर का वातावरण अत्यंत प्रफुल्लित, सारे हिसाब किताब चुक तू या फिर खुशी खुशी से चुक तू हो रहे हैं। फिर से आंखें खोलेंगे और बाबा को देखो और देखते रहो, अनंत शक्तियों की किरणें बह रही है और मेरा ये स्वप्न साकार हो रहा है। स्थित प्रज्ञ योगी, अचल अडोल योगी, बाबा मैं सब कुछ तुमको समर्पित करती हूं। मेरा सब कुछ तुम्हारा।